नमस्ते। शिक्षा में नए प्रेरक और नवीन अंतर्दृष्टि के लिए एजुकेशन विजन में वापस स्वागत है। आज हम एक फ्रांसीसी राजनेता और लेखक जैक सटाली की एक पुस्तक प्रस्तुत करेंगे। ये 472 पन्नों की एक किताब है जिसका शीर्षक है हिस्टोयस एट एवेनियस डी ला एजुकेशन, अर्थात इतिहास और शिक्षा का भविष्य, जो 2022 में फ्रांस में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में संबोधित मुख्य प्रश्न है, दुनिया में शिक्षा क्या दिख सकती है जैसे 21वीं सदी के अंत में। लेकिन पहले आइए लेखक का परिचय कराकर शुरू करें। जैक सटाली कौन है?
जैक सटाली का जन्म 1943 में हुआ था। उन्होंने दो सबसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी उच्च शिक्षा संस्थानों इकोले पॉलिटेक्निक और इकोले नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन में शिक्षा प्राप्त की थी। वह अर्थशास्त्र के डॉक्टर भी हैं। 1981 और 1991 के बीच वह फ्रांसीसी समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांसवा मिटरैंड के विशेष सलाहकार थे। फिर 1991 से 1993 तक उन्होंने पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक का नेतृत्व किया। वह कई पुस्तकों, विशेषकर निबंधों और उपन्यासों के लेखक हैं।
उनकी किताब हमें क्या बताती है?
शिक्षा के इतिहास और भविष्य पर इस पुस्तक में जैक सटाली 21वीं सदी के अंत तक दुनिया में शिक्षा प्रणालियों के संभावित भविष्य पर प्रकाश डालना चाहते हैं। क्या दुनिया में सभी बच्चों को पढ़ाए जाने वाला एक सार्वभौमिक कोष होगा? कौन ज्ञान प्रसारित करेगा? कंपनियां, संघ, सोशल नेटवर्क? और साथ ही प्रश्नों के अन्य उदाहरण, क्या डिजिटल उपकरण स्कूल की जगह लेंगे? क्या बिना दीवार वाला स्कूल आदर्श बन जाएगा? जैक सटाली का मानना है कि इन सवालों का जवाब देने के लिए सबसे पहले मानवता की सुबह से ज्ञान और संस्कृतियों के प्रसारण के इतिहास को समझना चाहिए। इसलिए पुस्तक को दो भागों में व्यवस्थित किया गया है।
तो पहला भाग शिक्षा के इतिहास के बारे में है?
हाँ, पहले भाग में, जिसमें अध्याय 1 से 6 शामिल हैं, लेखक उन मुख्य चरणों का संश्लेषण प्रस्तुत करता है जिन्होंने मानवता की उत्पत्ति के बाद से ज्ञान के संचरण के संगठन को आकार दिया है। जैक सटाली पुरातन पुरापाषाण और निचले पुरापाषाण में संचरण से शुरू होता है, जो कि हमारे युग से 3.3 मिलियन वर्ष पहले से हमारे युग से 350,000 वर्ष पहले की अवधि के दौरान कहना है। यह वह काल है जो मानव भाषा के प्रकट होने से पहले का है। लेखक का सुझाव है कि उस समय संचरण, उदाहरण, अनुकरण, अनुमोदन या अस्वीकृति, गुर्राना, चिल्लाना और स्वीकृति पर आधारित था। लेखक तब मध्य पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में संचरण का वर्णन करता है, जो कि हमारे युग से 350,000 साल पहले से हमारे युग से 10,000 साल पहले की अवधि के दौरान है। यह वह अवधि है जिसके दौरान मानव भाषा दिखाई देती है। इस अवधि के दौरान श्रम के विभाजन ने जोर पकड़ लिया। नतीजतन ज्ञान का संचरण अधिक विशिष्ट होता जा रहा है। ट्रांसमिशन परिवार या कबीले के सदस्यों द्वारा अभ्यास किए गए पेशे के विशिष्ट ज्ञान पर केंद्रित है। नवपाषाण काल के दौरान 10,000 और 2,000 ईसा पूर्व के बीच आबादी गतिहीन हो गई। कृषि और फिर पशुधन की स्थापना की गई। इन नई गतिविधियों को प्रबंधित करने, भंडार बनाने और खातों को रखने के लिए पहले अंकन और फिर लेखन प्रणाली का आविष्कार किया गया। उस समय लेखन प्रतीकों पर आधारित था, अभी अक्षरों पर नहीं और गोलियों और पेपिरस पर किया जाता था। अभिजात वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के आरोप में ट्यूटर दिखाई देते हैं। कांस्य युग और लौह युग में, यानी हमारे युग से पहले लगभग 2000 से लेकर हमारे युग की पहली शताब्दी के अंत तक, संचरण अब केवल परिवार या कबीले के भीतर खेतों और कार्यशालाओं में नहीं होता है। पहले स्कूल मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और चीन में दिखाई देते हैं। क्षेत्र के आधार पर उन्हें जीवन का घर या शिक्षकों का घर या अध्ययन का घर कहा जाता था और वे अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित थे। उस समय पहले अक्षर दिखाई दिए। 210 ईसा पूर्व से चर्मपत्र का उपयोग मिस्र में विकसित हुआ, जिससे लेखन सामग्री की सीमा का विस्तार हुआ। यहूदिया में हमारे युग से लगभग 100 साल पहले अधिकारियों ने सभी के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा की स्थापना की, जहां पढ़ना, लिखना और तोराह समाज के सभी सदस्यों, पुरुषों और महिलाओं पर लगाया गया था। हमारे युग की पहली दो शताब्दियों के दौरान कोडेक्स रोम में और कागज चीन में दिखाई दिया। तीसरी और 15वीं शताब्दियों के बीच ईसाई धर्म का विस्तार, फिर इस्लाम का, स्कूली शिक्षा को प्रभावित किया, जहां तक प्रत्येक प्रमुख धर्म ने अपने प्रभाव क्षेत्र में शिक्षा को नियंत्रित करने की मांग की। 15वीं शताब्दी के मध्य से प्रिंटिंग प्रेस, जिसके सिद्धांत पहले से ही चीन में 10वीं शताब्दी के बाद से ज्ञात थे, व्यापक हो गए। यूरोप में छपाई ने बाइबल के प्रसार और प्रोटेस्टेंट सुधार के विकास को बढ़ावा दिया। नए स्कूल प्रोटेस्टेंट लेकिन धर्मनिरपेक्ष भी कैथोलिक चर्च के प्रभाव से बाहर बनाए गए थे। ये नए स्कूल सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा समर्थित, शासित और वित्त पोषित थे। इन नए स्कूलों में अध्यापन आवश्यक रूप से लैटिन में नहीं बल्कि स्थानीय भाषा में था। शिक्षण सामग्री आर्थिक आवश्यकताओं जैसे लेखांकन, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य और कुछ अन्य व्यवसायों के अनुरूप नए विषयों के लिए खोली गई। पहले आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इसी अवधि के दौरान अनिवार्य स्कूली शिक्षा के विचार ने प्रभाव प्राप्त किया, जिसका उद्देश्य चर्च के केवल कुलीन लड़कों और भावी मौलवियों के बजाय पूरे समाज से लड़कियों और लड़कों को शामिल करना था। अनिवार्य स्कूली शिक्षा तब धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति से मूर्त रूप लेगी, जहां तक तकनीकी और वैज्ञानिक कौशल में जरूरतों का गुणन अब इसे आवश्यक बना देगा। 16वीं से 20वीं शताब्दी तक दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को स्कूलों पर धर्म की पकड़ ढीली करने और आर्थिक विकास की जरूरतों के आधार पर शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने की इस दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रत्येक देश ने इन मुद्दों को अपने तरीके से संबोधित किया, अपने इतिहास का अनुसरण करते हुए, अपनी गति से, अपने संदर्भ और अपनी बाधाओं के अनुसार। पुस्तक के 6 अध्याय में लेखक अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप के लगभग 30 देशों को जूम इन करके इनमें से कुछ राष्ट्रीय विकासों को दिखाता है। 20वीं सदी के बाद से स्कूलों और शिक्षा प्रणालियों को भी दो अतिरिक्त प्रवृत्तियों से निपटना पड़ा है। एक ओर नए मीडिया का विघटन, जो प्रसारण के तरीकों के साथ प्रतिस्पर्धा और नवीनीकरण करने के लिए आता है। 1920 के दशक से रेडियो, 1960 के दशक में टेलीविज़न, 1990 के दशक से कंप्यूटर और इंटरनेट, 2000 के दशक से सामाजिक नेटवर्क। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का उदय, जो वैश्विक स्तर पर शैक्षिक प्रणालियों और प्रथाओं के विकास की तुलना, बेंचमार्क, प्रभाव और मार्गदर्शन करना चाहते हैं। लेखक 1925 में बनाए गए शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो और 1945 में बनाए गए यूनेस्को का हवाला देते हैं। हम इस सूची में OECD, विश्व बैंक, पीसा या टिम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन और उच्च शिक्षा संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जोड़ सकते हैं।
अब पुस्तक के उस हिस्से के बारे में क्या जो भविष्य से संबंधित है?
पुस्तक की दूरदर्शी दृष्टि अध्याय 7 में प्रस्तुत की गई है। जैक्स अटाली के लिए इस चरण का उद्देश्य अगले कुछ दशकों में शिक्षा के आकार और संदर्भ का अनुमान लगाना है, एक विश्व जनसंख्या के लिए जिसकी वह 2050 में 9 अरब निवासियों से अधिक होने की उम्मीद करता है। हालांकि जनसांख्यिकीय रुझान इसके विपरीत होंगे। जबकि अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के देश कम से कम 2050 तक जनसंख्या वृद्धि का अनुभव करना जारी रखेंगे, जनसंख्या हर जगह स्थिर या घट जाएगी। जहां जनसंख्या बढ़ती रहेगी, वहां अधिक शैक्षिक बुनियादी ढांचे और योग्य कर्मियों की आवश्यकता होगी। जैक्स अटाली का अनुमान है कि आवश्यक निवेशों को वित्त पोषित करने के लिए 2050 तक आर्थिक विकास को प्रति वर्ष 4% से अधिक करना होगा। अन्यथा शिक्षा के लिए समर्पित राष्ट्रीय धन के हिस्से को दोगुना करना आवश्यक होगा। हालांकि उसे यह असंभव लगता है कि इन दोनों शर्तों में से एक या दूसरे को पूरा किया जा सकता है। इसलिए तीन संभावित परिदृश्य।
ये परिदृश्य क्या है?
पहला परिदृश्य, जिसे जैक्स अटाली अज्ञानता का बर्बरता कहते हैं, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों का पतन है। बढ़ती आबादी वाले देशों में पतन संसाधनों की कमी का परिणाम होगा। साथ ही स्थिर आबादी वाले देशों को शिक्षण व्यवसायों में कर्मचारियों को बनाए रखने और शिक्षार्थियों की नई पीढ़ियों की बदलती जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को अद्यतन करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली इसलिए देशों के दोनों समूहों में जोखिम में होगी। यह संभावना है कि विकसित देश, जो अपनी स्वयं की चुनौतियों का सामना करने के प्रयासों में लगे हुए हैं, विकासशील देशों में अपेक्षित शैक्षिक निवेश के लिए जितना जरूरी है उतना योगदान नहीं कर पाएंगे। लेखक के अनुसार कई देशों में शिक्षा पिछली सहस्राब्दी की तरह परिवार और निजी, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक समूहों के प्रभाव में वापस आ जाएगी। कम से कम एक तिहाई मानवता पढ़ने, लिखने या गिनने में सक्षम नहीं होगी। लोकतंत्र का पतन होगा। लोकलुभावन लोगों की व्यापक जीत होगी। सभ्यता का पतन होगा। दूसरा परिदृश्य, जिसे लेखक कलाकृति की बर्बरता कहता है, प्रसारण के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन का है। संसाधनों की कमी का सामना कर रहे देशों के लिए यह एक बच निकलने का रास्ता हो सकता है और दूसरों के लिए तकनीकी प्रगति द्वारा संभव बनाया गया एक जानबूझकर विकल्प हो सकता है। स्कूल को ऐसे उपकरणों से बदल दिया जाएगा जो हर किसी को, चाहे वे कहीं भी हों, ज्ञान की पूरी श्रृंखला तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। संभावित तकनीकों की पूरी श्रृंखला को गतिशील किया जाएगा, अर्थात न केवल दूरस्थ शिक्षा बल्कि आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, तंत्रिका कृत्रिम अंग सीधे शिक्षार्थी के मस्तिष्क से जुड़े होंगे, कृत्रिम मस्तिष्क और आनुवंशिक कृत्रिम अंग का उल्लेख नहीं करना। लेखक के लिए इसका परिणाम यह होगा कि पारंपरिक शिक्षा द्वारा सक्रिय मानव मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों को अब नहीं बुलाया जाएगा। मनुष्य अब मशीनों के अलावा संवाद नहीं करेगा। जेनेटिक प्रोस्थेसिस यूजेनिक्स को बढ़ावा देंगे। अधिनायकवादी शासन के लिए नई प्रौद्योगिकियां एक असाधारण उपकरण होंगी। मनुष्य एक वस्तु, एक कलाकृति में बदल जाएगा। तीसरा परिदृश्य, अंत में होमो हाइपरसेपियंस और सामूहिक अतिचेतनता का परिदृश्य कहा जाता है। यह परिदृश्य, जिसके लिए लेखक कहता है, मानवता को कई सिद्धांतों के आधार पर अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव देता है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया में हर जगह 23 वर्ष की आयु तक अध्ययन या प्रशिक्षण में रहने के अधिकार और सामग्री और वित्तीय साधनों की गारंटी देना शामिल है, जिसे लेखक उच्च शिक्षा के अंत की उम्र मानता है। जैक्स अटाली निर्दिष्ट करते हैं कि सीखने से इनकार करने वाले को पारिश्रमिक देना कभी भी आवश्यक नहीं होगा। संचरित किए जाने वाले मूल्यों में अन्य बातों के अलावा वर्जनाओं के लिए सम्मान, अनुरूपता से इनकार, परोपकार, सहानुभूति, टीमवर्क के लिए एक स्वाद और परोपकारिता शामिल हैं। लेखक के लिए नैतिकता और पारिस्थितिकी को भी ज्ञान के उद्देश्यों में एकीकृत किया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों के खिलाफ हिंसा या जबरदस्ती, चाहे शारीरिक, मौखिक या मानसिक, हर जगह प्रतिबंधित होनी चाहिए। शैक्षणिक नवाचार को सामान्यीकृत किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए गंभीर खेल या उल्टी कक्षा, जिसमें छात्र अपने स्वयं के पाठ का निर्माण करते हैं। लेकिन साथ ही 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल प्रतिबंधित होना चाहिए। जैक्स अटाली ने हाइब्रिड क्लास विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें कोई भी शिक्षार्थी कम से कम आंशिक रूप से दूरस्थ शिक्षा का चयन कर सकता है। वह पालन पोषण के पेशे में वयस्कों को प्रशिक्षित करने और बच्चों और किशोरों की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक कोड की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है। यह तीसरा परिदृश्य होमो हाइपरसेपियंस बुद्धिमान, अधिक स्पष्ट और अधिक परोपकारी की ओर जाता है। लेखक के अनुसार यह परिदृश्य एक अतिचेतना के उद्भव को भी जन्म दे सकता है, जो अपने शब्दों में बुराई की भावना से संक्रमित नहीं होगा। सुपरकॉन्शियस पूरे ब्रह्मांड में मानवता के सबसे बुरे को फैलाना नहीं चाहेगा और उन गलतियों और राक्षसों से सीखेगा जो मानवता ने अतीत में की होंगी।
अंत में, इस पुस्तक के बारे में क्या सोचना है? इसकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? और यह क्या लाता है?
पुस्तक की सामग्री निस्संदेह विचारधारा और नैतिकता से भरी हुई है, जैसा कि विशेष रूप से तीसरे परिदृश्य के प्रस्तावों द्वारा चित्रित किया गया है। शुरुआत से लेखक सामाजिक समूहों को नामित करता है, जो अपने शब्दों में दूसरों के काम से उत्पन्न अधिशेष पर जीवित रहते हैं, सामाजिक पदानुक्रम में सबसे अच्छा स्थान रखते हैं। एक अच्छे मार्क्सवादी के रूप में जैक्स अटाली स्पष्ट रूप से उदार अर्थव्यवस्था और निजी उद्यम के प्रति अपने अविश्वास को दर्शाता है। उदारवादी अर्थशास्त्र पर संदेह है कि वह शिक्षा को उस तक सीमित करना चाहता है जो कार्यकर्ता के उत्पादन और उपभोक्ता की खपत के लिए सख्ती से आवश्यक है। उस पर शिक्षा को बाजार बनाने की इच्छा का भी संदेह है। लेखक भी बार बार धर्मों के प्रति अपने अविश्वास को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, वह मानता है कि कैथोलिक चर्च ने व्यवस्थित रूप से यह सुनिश्चित किया है कि उसके मौलवियों के अलावा कोई भी पढ़ या लिख नहीं सकता है, जिससे साक्षरता में बाधा उत्पन्न हुई है। और जैसा कि समकालीन फैशन के लिए बलिदान करने के लिए लेखक हर तीन पृष्ठ शिक्षा के लिए अभिजात वर्ग की विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच को इंगित करता है और पूरे इतिहास में महिलाओं या बाल शोषण के संबंध में किए गए अन्याय पर क्रोधित है। तीसरे परिदृश्य के प्रस्तावों को पढ़ते हुए कोई भी उस वैचारिक धारा के आवर्ती आकर्षण को देखे बिना नहीं रह सकता है, जिससे लेखक विनियमन के लिए संबंधित है और मानव स्वभाव को बदलने और मानदंडों के माध्यम से मानव को बदलने की संभावना में उसका विश्वास है। उदाहरण के लिए, लेखक इसके बजाय एक प्रोत्साहन दृष्टिकोण प्रस्तावित कर सकता था जो उन लोगों के गैर वित्त पोषण से परे हैं जो सीखने के लिए अनिच्छुक हैं। कुछ अधिनायकवादी शासनों के बीच दुर्लभ उदाहरणों के अलावा मानव समाजों का इतिहास यह संकेत नहीं देता है कि समय के साथ लोगों के बारे में नियमों और मानदंडों का संचय प्रभावी, टिकाऊ और लंबे समय में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा, पुस्तक हमेशा बहुत अच्छी तरह से निर्मित नहीं होती है। कुछ मार्ग दो अलग अलग स्थानों में समान रूप से दोहराए जाते हैं। उदाहरण के लिए, परिचय निष्कर्ष के पहले तीन पृष्ठों को दोहराता है। आम तौर पर यह पुस्तक एक पहचाने गए वैचारिक या सैद्धांतिक ढांचे के साथ एक अकादमिक कार्य नहीं है, जिसके तहत लेखक एक स्पष्ट कार्यप्रणाली के आधार पर परिकल्पनाओं को मान्य या खंडन करने का प्रयास करेगा। पुस्तक निश्चित रूप से जानकारी का खजाना है, लेकिन यह आम जनता के लिए पक्षपात और व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पेश करने वाली पुस्तक है, जो कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से भोली दिखाई दे सकती है। उदाहरण के लिए, तीसरे परिदृश्य के कुछ प्रस्ताव। बहरहाल, किताब दो कारणों से दिलचस्प है। सबसे पहले, लेखक रेखांकित करता है कि शिक्षा या प्रसारण के वैश्विक इतिहास को प्रस्तुत करने वाला कोई संश्लेषण नहीं था। मौजूदा साहित्य में अनिवार्य रूप से देशों, क्षेत्रों या अवधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले मोनोग्राफ शामिल हैं। इस दृष्टिकोण से जैक्स अटाली द्वारा शिक्षा का इतिहास और भविष्य निस्संदेह एक अंतर भरता है। इन सबसे ऊपर, यह पुस्तक शिक्षा में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए उत्तेजक प्रश्न उठाती है, चाहे वह शैक्षिक दर्शन, शिक्षाशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक इतिहास या राजनीति, शैक्षिक समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र हो और न केवल। ऐसे में यह किताब निश्चित रूप से पढ़ने लायक है।
धन्यवाद। ये सभी आज के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे।